पद्य 40 का गुप्त इतिहास संख्या 23
ये हिजकेल संख्या 4। ये हिजकेल की पहचान विलाप करने वाले भविष्यद्वक्ता के रूप में की जाती है, क्योंकि वो उन 144,000 का प्रतीक है जो उसकी पुस्तक के अध्याय 9 में देश और कलीसिया में किए गए घृणित कामों के कारण विलाप कर रहे हैं, आहें भरते और रोते हैं। पिछली लेख में जिन टेस्टिमोनीज के अंश का हमने उद्धरण दिया था, उसमें सिस्टर व्हाइट ने लिखा, भविष्यद्वक्ता स्वयं परदेश में एक परदेशी था, जहां असीम महत्वाकांक्षा और क्रूर बर्बरता का पूर्ण प्रभुत्व था। मनुष्य के अत्याचार और अन्याय के विषय में जो कुछ उसने देखा और सुना, उससे उसकी आत्मा व्यथित हो उठी और वो दिन रात कड़वे विलाप के साथ शोक करता रहा।
144,000 इसराइल के निष्कासित जन हैं जो तितर बितर किए गए थे, जैसा कि यहेज़केल के बंधुआई में ले जाए जाने द्वारा निरूपित किया गया है। यहेज़केल 9 में प्रदर्शित मुहर लगाने की प्रक्रिया वही है जो प्रकाशित वाक्य 7 में है, और इन दोनों अध्यायों को अंतिम दिनों में घटित होते हुए प्रस्तुत किया गया है।
परमेश्वर के दासों पर की जाने वाली ये मुहरबंदी वही है जो यहेज़केल को दर्शन में दिखाई गई थी। टेस्टिमोनीज टू मिनिस्टर्स 445।
सिंहासन से परमेश्वर करूबों का निर्देशन करता है और वे आगे चलकर पहियों का संचालन करते हैं। दर्शन से यहेज़केल को समझना था कि परमेश्वर नियंत्रण में है, यहाँ तक कि उस काल में भी जब सब कुछ भ्रम की स्थिति में प्रतीत होता था। सिस्टर व्हाइट परमेश्वर के सिंहासन पर स्थित उस व्यवस्था की रचना को प्रस्तुत करने के पश्चात, जहाँ वो करूबों का निर्देशन करता है जो पृथ्वी के कार्यों का प्रबंध करते हैं, उसी प्रकार कहती हैं जैसा कि वो पवित्र स्थान में यूहन्ना का वर्णन करती हैं, जहाँ मसीह 7 कलीसियाओं के बीच चलता था। यहेज़केल और यूहन्ना उन लोगों के प्रतीक हैं जो 144,000 की मुहरबंदी के समय में जीवित रहते हैं, जिनके विषय में, जैसा प्रेरणा ने अभिलिखित किया है, द सीन्स टू बी इनैक्टेड इन आर वर्ल्ड आर नॉट येट इवन ड्रीम्ड ऑफ।
निश्चय ही जब बहन व्हाइट ने वे शब्द लिखे थे, तब वे शब्द सत्य थे, परंतु मुहरबंदी के समय में वे अपनी परिपूर्ण पूर्ति पाते हैं। लगभग 20 वर्ष पहले क्या आपने कभी सोचा होता कि जो अब संसार में घटित हो रहा है, उसका संबंध इस्लाम के टिड्डियों के झुंड के साथ होगा? प्रकाशित वाक्य के 9वें अध्याय में इस्लाम के प्रतीक के रूप में टिड्डियां प्रकृति में उत्तरी अफ्रीका की टिड्डियों के प्रव्रजन को सम्मिलित करती हैं। अफ्रीका की उन झुंड बनाकर चलने वाली टिड्डियों का प्रव्रजन पथ उस भूगोल के साथ मेल खाता है जिस पर इस्लाम ने अधिकार कर लिया था। इस्लाम इश्माइल का वंशज है और इश्माइल की माता हाजिरा थी। हाजिरा का अर्थ है उड़ान या भाग जाना। अरबी में ये नाम सामान्यतः हाजर रूप में प्रस्तुत किया जाता है, और ये उसी मूल से संबंधित है जिससे हमें हिजरत मोहम्मद का प्रव्रजन पलायन शब्द प्राप्त होता है। इस्लाम की जड़ें केवल टिड्डियों के झुंड से ही संबद्ध नहीं है, बल्कि उन जड़ों में प्रव्रजन का अर्थ भी सम्मिलित है। क्या किसी ने कभी ये कल्पना की थी कि अवैध आप्रवासन इस्लाम की टिड्डी का एक प्रकटीकरण है?
क्या किसी ने ये स्वप्न देखा था कि वैश्विक साम्यवादी इस्लामी भीड़ों के साथ एक गठबंधन बनाएंगे? इस्लाम और वैश्विकतावादियों की अजगर शक्ति दोनों ही क्रमशः प्रकाशित वाक्य 9:11 में अथाह गढ़े से ऊपर उठते हैं, और अथाह गढ़ा शैतानी शक्ति की एक अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। सत्य के पवित्र शास्त्रों के अनुसार वर्तमान के ये दोनों सहयोगी शैतान के औजार हैं।
जब वे अपनी गवाही पूरी कर चुके होंगे, पूरी कर रहे होंगे, वो अवधि जिसमें उन दो गवाहों को टाट ओढ़े हुए भविष्यद्वाणी करनी थी, 1798 में समाप्त हुई, जब वे अपने उस कार्य की समाप्ति के निकट पहुंच रहे थे जो अस्पष्टता में किया जा रहा था। तब उन पर उस शक्ति द्वारा युद्ध किया जाना था जिसका प्रतिनिधित्व उस पशु के रूप में किया गया है जो अथाह कुंड से ऊपर चढ़ता है। यूरोप की बहुत सी जातियों में कलीसिया और राज्य में शासन करने वाली शक्तियां सदियों तक पोप तंत्र के माध्यम से शैतान के नियंत्रण में रही थीं, परंतु यहां शैतानी शक्ति की एक नई अभिव्यक्ति दृष्टिगोच कराई गई है। द ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी 268।
यहां सिस्टर व्हाइट फ्रांसीसी क्रांति के काल में समाजवाद के आगमन की पहचान करती है, साथ ही ये भी उल्लेख करती है कि शैतान पोपी शक्ति को भी नियंत्रित करता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 में पोपी शक्ति भी अथाह कुंड में से निकलती है, और प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 में इस्लाम वो धुआं है जो अथाह कुंड में से उठा। बात फिर भी वही बनी रहती है क्या प्रेरणा का अभिप्राय वास्तव में ये था, हमारे संसार में जो दृश्य घटित होने वाले हैं उनका स्वप्न तक अभी नहीं देखा गया है? किसने स्वप्न में भी सोचा था कि अब इस्लाम समूचे यूरोप में फैल जाएगा और अब अमेरिका महाद्वीपों पर उतर आएगा? क्या तुमने स्वप्न में देखा था कि टिड्डियां संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी के वैश्विकतावादियों द्वारा समस्त विश्व में फैला दी जाएंगी? किसने ये स्वप्न देखा था कि शैक्षिक संस्थानों पर उस साम्यवादी और इस्लामी गठबंधन का आधिपत्य हो जाएगा जिसका पोषण अब उन नागरिकों के कर धन से किया जा रहा है जिन्होंने कभी ये अभिप्रेत नहीं किया था कि उनका कर धन उसी राष्ट्र के विनाश के लिए प्रयुक्त किया जाएगा जो वो कर धन प्रदान कर रहा है? किसने कल्पना की थी कि ग्रेट ब्रिटेन इस्लाम के द्वारा श्वेत लड़कियों के सामूहिक बलात्कार, अपहरण, बंधक बनाकर कैद किए जाने और हत्या का समर्थन करेगा और उसे बढ़ावा देगा? बहुत से लोग इस तथ्य की ओर संकेत करते हैं कि मानव इतिहास में अब तक विद्यमान प्रत्येक साम्यवादी व्यवस्था पूर्णतः विफल रही है, परंतु ब्रिटेन के समाजवाद का फल समाजवाद की उतनी ही निंदा है जितनी उस व्यवस्था की आर्थिक और राजनीतिक दार्शनिकताओं की विफलता। किसने ये कल्पना की होती कि पृथ्वी के व्यापारियों को 17 मिलियन से भी अधिक लोगों की सामूहिक हत्या को अंजाम देने के लिए विषैले पदार्थ प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाएगी? किसने सोचा था कि जॉर्ज सोरोस, बिल गेट्स और एंथनी फाउची जैसे मनुष्यों को अपने दुष्टात्मिक दुष्कर्मों को पूर्णतः बिना किसी परिणाम के अंजाम देने की अनुमति दी जाएगी? जब सिस्टर व्हाइट ने ये कहा कि जो दृश्य घटित किए जाएंगे उनके विषय में स्वप्न में भी नहीं सोचा जाएगा, तब उन्होंने ऐसा 1,44,000 के मुद्रांकन के समय के संदर्भ में कहा। वे मत्ती 24 में मसीह की उस चेतावनी पर अपनी टिप्पणियों को आगे बढ़ा रही थीं, जहां उन्होंने लिपिबद्ध किया, ये शिक्षाएं हमारे लाभ के लिए हैं। हमें अपना विश्वास परमेश्वर पर स्थिर रखना है, क्योंकि हमारे ठीक सामने ऐसा समय है जो मनुष्यों के प्राणों की परीक्षा लेगा। जैतून के पर्वत पर मसीह ने उन भयावह न्यायों का वर्णन किया जो उसके दूसरे आगमन से पहले होने वाले थे। जिन शिक्षाओं का उसने अभी अभी उल्लेख किया था वे पवित्र स्थान में यहेजकेल और यूहन्ना दोनों के उन दृष्टांतों से संबंधित थीं जिनके द्वारा वे ये समझना सीख रहे थे कि परमेश्वर सब बातों पर नियंत्रण रखता है। इस समय जो भ्रम और विद्रोह चल रहा है और जो इतिहास के आगे बढ़ने के साथ साथ केवल और अधिक बढ़ता जाएगा, उसमें जो लोग परमेश्वर के दूत हैं जिनका प्रतिनिधित्व केवल मंदिर में यहेजकेल और यूहन्ना ही नहीं वरन यशायाह भी करता है, वे इतिहास के मार्ग में केवल तभी इस प्रकार आगे बढ़ेंगे कि प्रभु की महिमा हो, यदि वे ये समझें कि जिन बातों की हमने कभी कल्पना भी नहीं की वे भी परमेश्वर के ही नियंत्रण में है। वे पहिए जो अन्य पहियों को काटते हुए जाते हैं उन घटनाओं को सम्मिलित करते हैं जिनकी कभी कल्पना भी नहीं की गई थी, और वही वे घटनाएं हैं जो उस मुद्रांकन के समय में घटित होती हैं जो 9 घड़बीय को आरंभ हुआ। जो शिक्षाएं सीखी जानी हैं वे केवल उन्हीं के द्वारा सीखी जाती हैं जो विश्वास के द्वारा परम पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं और मसीह को तथा उसके उस प्रकाश को देखते हैं जो संदूक से चमक रहा है, जब उस महिमा को, जैसा कि 10वें अध्याय में दानियल द्वारा निरूपित किया गया है, देखा जाता है, तब वो वर्ग जो उस प्रकाश से लाभान्वित होता है उनसे पृथक कर दिया जाता है जो उस दर्शन से भाग गए।
और मैं दानियल ने अकेले ही उस दर्शन को देखा, क्योंकि जो पुरुष मेरे संग थे उन्होंने उस दर्शन को नहीं देखा, पर उन पर बड़ा भय और कंपकंपी छा गई, यहाँ तक कि वे अपने आप को छिपाने के लिए भाग गए। दानियल 10:7।
पिछले लेख के इस खंड से और भी बहुत कुछ निकाला जा सकता है, परंतु इस लेख को समाप्त करते हुए हम एक पहिए पर विचार करेंगे। पिछले लेख में हमने संख्या 25 के प्रतीकवाद पर ध्यान दिया था और उससे पहले हमने संख्या 30 पर कुछ समय लगाया था। यहेजकील की पुस्तक से मिलने वाला प्रकाश केवल प्रतीकात्मक संख्याओं तक सीमित नहीं है, तथापि उलझन में से कुछ स्पष्टता सामने लाना आरंभ करने से पहले उन संख्यात्मक प्रतीकों में से कुछ से परिचित हो लेना उपयोगी है।
17।
250-50 वर्षों की ये तीन भविष्यवाणियां 17 वर्षीय एक अवधि की पहचान करती है जो स्मुर्ना की कलीसिया के इतिहास के अंत में आरंभ होती है। 313 से 330 तक के 17 वर्ष पशु की मूर्ति की स्थापना का प्रतीकात्मक निरूपण करते हैं। 455 ईसा पूर्व में आरंभ हुए वे 250 वर्ष 207 ईसा पूर्व में समाप्त हुए। अर्थात राफिया की लड़ाई के 7 वर्ष बाद और पैनियम की लड़ाई के 10 वर्ष पहले। राफिया से पैनियम तक 17 वर्ष थे और ये दानियेल 11 के पद 11 से 15 में प्रस्तुत पद 40 के गुप्त इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है। टॉलेमी चतुर्थ फिलोपैटर, जिसे टॉलेमी चतुर्थ के नाम से भी जाना जाता है, वो शासक था जिसने 217 ईसा पूर्व में राफिया का युद्ध जीता था। उसने 221 ईसा पूर्व से 204 ईसा पूर्व तक टॉलेमिक मिस्र के राजा और फिरौन के रूप में शासन किया। इस प्रकार उसने 17 वर्ष तक राज्य किया। उसने अपना शासन राफिया के युद्ध से पहले आरंभ किया, परंतु पानियम के युद्ध से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई।
राफिया का युद्ध, जो यूक्रेनी युद्ध का प्रतिनिधित्व करता है, 2014 में तब आरंभ हुआ जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूक्रेन में एक रंग क्रांति को उत्पन्न किया। दक्षिण का राजा टॉलेमी चतुर्थ व्लादिमीर पुतिन का प्रतिरूप है, जिसने 2000 में अपना शासन आरंभ किया, अर्थात उस वर्ष से 1 वर्ष पहले, जब 2001 में 1,44,000 पर मुहर लगाने का कार्य आरंभ हुआ। टॉलेमी की ही भांति पुतिन ने भी यूक्रेनी युद्ध से पहले शासन करना आरंभ किया, जिसका प्रतिरूप 2014 में आरंभ होने वाला राफिया का युद्ध है। पैनियम से पहले पुतिन, जिसका प्रतिरूप टॉलेमी है, हटा दिया जाता है। पुतिन ने 2000 में शासन आरंभ किया। इस प्रकार वो मुहर लगाने के समय की शुरुआत के साथ मेल खाता है, जो अगले वर्ष 2001 में आरंभ हुआ। टॉलेमी द्वारा निरूपित 17 प्रतीकात्मक वर्ष उस अवधि की पहचान कराते हैं जिसके दौरान पुतिन शासन करता है, और वो ऐसा मुहर लगाने के समय के दौरान करता है।
457 ईसा पूर्व में आरंभ हुए 250 वर्षों की समाप्ति द्वारा निरूपित ट्रंप उसी गुप्त इतिहास में स्थित है जिसमें पुतिन स्थित है। ये इतिहास 17 वर्षों का है, जिसका आरंभ राफिया के युद्ध से होता है। अजगर पुतिन और झूठा भविष्यद्वक्ता ट्रंप इस गुप्त इतिहास के भीतर स्थित है। उस इतिहास में वो पशु, जिसे तेरे लोगों के लुटेरे के रूप में निरूपित किया गया है और जो पोपीय सत्ता का प्रतीक है, राफिया से पानियम तक के उन 17 वर्षों के अंत में स्थित है।
वर्ष 321 संयुक्त राज्य अमेरिका में रविवार व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है और 321-313 में मिलान की आज्ञप्ति से लेकर 330 में साम्राज्य के विभाजन तक की 17 वर्षीय अवधि के भीतर स्थित है। जिस इतिहास का प्रतिनिधित्व उस घटना से होता है जिसे योशिया का महान फसह कहा जाता है, वो यहूदियों के 17वें जुबिली चक्र का आरंभ करता है। योशिया के फसह से लेकर जो पुराने नियम में सबसे महान पुनरुत्थान है, 22 अक्टूबर तक का कालखंड 11 अगस्त 1840 से 22 अक्टूबर 1844 तक के मिल्रवादी इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है। परंतु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये है कि ये 9/11 से लेकर रविवार के विधान तक के इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है। 1,44,000 के मुद्रांकन का समय योशिया से लेकर 22 अक्टूबर तक के 17वें जुबिली चक्र द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है। 17 एक ऐसा प्रतीक है जो मुद्रांकन के समय की प्रमुख घटनाओं के साथ संबद्ध है, और संख्या 17 वो बिंदु है जहां यहेजकेल के पहिए परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं।
दानियेल के 40वें पद के गुप्त इतिहास में, जैसा कि उसी अध्याय के 10वें से 15वें पदों में निरूपित है, ड्रैगन का संबंध टॉलेमी के राज्यकाल के द्वारा संख्या 17 से जोड़ा गया है। 11वें पद में राफिया के युद्ध से लेकर 15वें पद में राफिया के युद्ध तक का इतिहास 17 वर्षों का है। वो इतिहास डोनाल्ड ट्रंप को उन दो युद्धों द्वारा निरूपित 17 वर्षों के मध्य में स्थापित करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में ट्रंप द्वारा गढ़ी और स्थापित की गई पशु की मूरत 303 से 330 तक के 17 वर्षों द्वारा निरूपित है। अध्याय 1 के प्रथम पद में यहेजकेल 17वें जुबिली चक्र के 33वें वर्ष में है। क्या तुमने कभी स्वप्न में भी सोचा था कि संख्या 17 उन पहियों में से एक का प्रतिनिधित्व करती है जिन्हें यहेजकेल ने परम पवित्र स्थान में देखा था?
यहेजकेल उन लोगों का प्रतीक है जो मुहर लगाए जाने के समय विश्वास के द्वारा परम पवित्र स्थान में प्रवेश कर चुके हैं। वे पतरस के याजक हैं।
तुम भी जीवित पत्थरों के समान होकर एक आत्मिक भवन, अर्थात एक पवित्र याजक वर्ग के रूप में निर्मित किए जाते हो, ताकि आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हों। 1 पतरस 2:5
उन्हें परमेश्वर की पूर्व वाचा प्रजा के लिए एक संदेश प्रस्तुत करने का दायित्व सौंपा गया है जो उस समय उपेक्षित की जा रही होगी, यद्यपि उन्हें पहले ही चेतावनी दे दी गई है कि परमेश्वर की पूर्व वाचा प्रजा न तो देखेगी और न सुनेगी।
और उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो पत्र ग्रंथ मैं तुझे देता हूँ उसे खा, अपने पेट को खिलाना और अपनी अंतड़ियों को उससे भर ले। तब मैंने उसे खाया और वो मेरे मुंह में मधु के समान मीठा था। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, इज़राइल के घराने के पास जा और उनसे मेरे वचन कह, क्योंकि तू ऐसी प्रजा के पास नहीं भेजा गया है जिसकी बोली अनजानी हो और जिसकी भाषा कठिन हो, परंतु इज़राइल के घराने के पास, न बहुत सी ऐसी जातियों के पास जिनकी बोली अनजानी हो और जिनकी भाषा कठिन हो, जिनके वचन तू समझ न सके। निश्चय यदि मैं तुझे उनके पास भेजता तो वे तेरी सुनते, परंतु इज़राइल का घराना तेरी न सुनेगा, क्योंकि वे मेरी नहीं सुनते, क्योंकि इज़राइल का सारा घराना ढीठ और कठोर हृदय है। देख, मैंने तेरे मुख को उनके मुखों के सामने दृढ़ और तेरे माथे को उनके माथों के सामने दृढ़ कर दिया है। चकमक पत्थर से भी अधिक कठोर हीरे के समान मैंने तेरा माथा कर दिया है। उनसे मत डर और न उनके मुख देखने से व्याकुल हो, यद्यपि वे विद्रोही घराना है। यहेजकेल 3:9
यहेजकेल को ये निर्देश दिया गया है कि वो पूर्व वाचा प्रजा के लिए एक संदेश का प्रचार करे जिसका प्रतिनिधित्व मिलेराइट इतिहास के प्रोटेस्टेंटों और अंतिम दिनों की लाओदीकिया स्थित सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया द्वारा होता है। यदि वो उस संदेश का प्रचार करने से इनकार करे तो जो लोग बिना चेतावनी के छोड़ दिए गए हैं उनका लहू उसी पर होगा।
हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इसराइल के घराने के लिए पहरेदार ठहराया है, इसलिए तू मेरे मुख से वचन सुन और मेरी ओर से उन्हें चेतावनी दे। जब मैं दुष्ट से कहूँ तू निश्चय ही मरेगा, और तू उसे चेतावनी न दे और दुष्ट को उसके दुष्ट मार्ग से फेरने के लिए न बोले कि उसका प्राण बचे, तो वो दुष्ट मनुष्य अपने अधर्म में मरेगा, परंतु उसका लोहू मैं तेरे हाथ से लूंगा। तो भी यदि तू दुष्ट को चेतावनी दे और वो अपनी दुष्टता से और अपने दुष्ट मार्ग से न फिरे तो वो अपने अधर्म में मरेगा, परंतु तूने अपना प्राण बचा लिया होगा। फिर जब कोई धर्मी अपनी धार्मिकता से फिरकर अधर्म करे और मैं उसके सामने ठोकर खिलाने की वस्तु रखूं तो वो मरेगा, क्योंकि तूने उसे चेतावनी नहीं दी, इस कारण वो अपने पाप में मरेगा और उसके जो धर्म के काम उसने किए हैं उनका स्मरण न किया जाएगा, परंतु उसका लोहू मैं तेरे हाथ से लूंगा। तो भी यदि तू धर्मी को चेतावनी दे कि धर्मी पाप न करे और वो पाप न करे तो वो निश्चय जीवित रहेगा, क्योंकि उसे चेतावनी दी गई और तूने भी अपना प्राण बचा लिया होगा। यहेजकेल 3:17-21
यहेजकेल की पहली 11 अध्यायों में उसे यरूशलेम के विनाश का दर्शन कराया जाता है जिसे कबार नदी, मैदान और यरूशलेम के दर्शनों द्वारा चित्रित किया गया है। उसे ये दायित्व सौंपा जाता है कि वो यरूशलेम पर आने वाले निकटवर्ती न्याय की चेतावनी का प्रचार करे। यरूशलेम पर आने वाले इस निकटवर्ती न्याय की चेतावनी वही चेतावनी है जो पहले लौदीकियाई सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया को दी जाती है। ये चेतावनी यरूशलेम में परमेश्वर की उस प्रजा के न्याय और अस्वीकृति की पहचान कराती है जिनके पास परमेश्वर की मुहर नहीं है। यहेजकेल द्वारा पूर्व छायित ये चेतावनी शीघ्र आने वाले संडे कानून की चेतावनी है। उन प्रथम 11 अध्यायों में जहां ये सत्य प्रतिपादित किए गए हैं, यहेजकेल को गूंगा कर दिया जाता है और इसके पश्चात वो केवल तभी बोलता है जब परमेश्वर विशेष रूप से इसका मुंह खोलता है, और ये स्थिति यरूशलेम के विनाश तक बनी रहती है जिसके पश्चात वो फिर बोल सकता है।
तब आत्मा मुझ में प्रवेश कर गई और मुझे मेरे पैरों पर खड़ा किया, और उसने मुझसे बात की और मुझसे कहा, जा अपने घर के भीतर अपने को बंद कर ले, परंतु हे मनुष्य के संतान, देख वे तुझ पर बंधन डालेंगे और तुझे उनसे बांध देंगे और तू उनके बीच बाहर न जा सकेगा, और मैं तेरी जीभ को तेरे तालू से चिपका दूंगा जिससे तू गूंगा हो जाएगा और उनके लिए डांटने वाला न ठहरेगा, क्योंकि वे विद्रोही घराना है। परंतु जब मैं तुझसे बात करूंगा तब मैं तेरा मुंह खोल दूंगा और तू उनसे कहना, प्रभु यहोवा यों कहता है, जो सुनता है वो सुने और जो नहीं मानता वो न माने, क्योंकि वे विद्रोही घराना है। यहेजकेल 3:24-27
जब यरूशलेम गिर पड़ा
तब यहेजकेल एक बार फिर बोल सकता था।
और ऐसा हुआ कि हमारी बंधुआई के 12वें वर्ष में 10वें महीने के 5वें दिन यरूशलेम से बचकर निकला हुआ एक मनुष्य मेरे पास आया और कहने लगा, नगर नाश कर दिया गया है, और जो बचकर निकला हुआ था उसके आने से पहले संध्या के समय यहोवा का हाथ मुझ पर हुआ था, और उसने प्रातः उसके मेरे पास आने तक मेरा मुंह खोल दिया था, सो मेरा मुंह खुल गया और मैं फिर गूंगा न रहा। यहेजकेल 33:21-22।
यरूशलेम का पतन अंतिम दिनों में लौदीकिया की सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया के पतन का प्रतिनिधित्व करता है। वो पतन उसी समय घटित होता है जब 9वें अध्याय में यरूशलेम में जिन पर मुहर की गई थी उन्हें तब विजयी कलीसिया के रूप में उठा लिया जाता है। यरूशलेम के भीतर के लौदीकियाई बाहर निकाल लिए जाते हैं और 1,44,000 को ऊपर उठाया जाता है जब महिमा का राज्य स्थापित किया जाता है। महिमा के उस राज्य का प्रतिरूप क्रूस पर अनुग्रह के राज्य की स्थापना द्वारा प्रस्तुत किया गया था। क्रूस पर अनुग्रह का राज्य रविवार के कानून पर महिमा के राज्य के साथ संगति रखता है, और ये दोनों राज्य यहेजकेल की पुस्तक में स्थित भविष्यद्वाणी के इतिहास के क्रम में रखे गए हैं। पहले 11 अध्याय जब यहेजकेल को पवित्र स्थान के संदर्भ में रखा जाता है तब परमेश्वर की कलीसिया की शुद्धि के विषय में है, क्योंकि उसकी प्रजा लड़ाकू कलीसिया से, जिसे गेहूं और जंगली बीजों से मिलकर बनी हुई परिभाषित किया गया है, विजयी कलीसिया में परिवर्तित हो जाती है, जो पिंतेकुस्त की गेहूं की भेंट से बनी हुई है।
और हे इसराइल के अपवित्र दुष्ट प्रधान, जिसका दिन आ पहुंचा है जब अधर्म का अंत होगा, प्रभु यहोवा यों कहता है, पगड़ी उतार दे और मुकुट हटा दे, ये वैसा न रहेगा, जो नीचा है उसे ऊंचा किया जाएगा और जो ऊंचा है उसे नीचा किया जाएगा, मैं उसे उलट दूंगा, उलट दूंगा, उलट दूंगा, और वो फिर न रहेगा जब तक वो न आए जिसका उस पर अधिकार है, और मैं उसे वही दूंगा। यहेजकेल 1:25-27।
सिदकिया यहूदा का अंतिम राजा था और पदों में वही इसराइल का दुष्ट प्रधान जिसका दिन आ पहुंचा है। नबुकदनेस्सर यरूशलेम को लेने ही वाला था और सिदकिया का मुकुट बाबुल द्वारा उतार लिया जाना था, जिसे मादी और फारसी उलट देंगे, उन्हें आगे चलकर यूनानी उलट देंगे और यूनानियों को रोम उलट देगा। तीसरा उलटाव रोम पर आकर पहुंचता है, जो वो ऐतिहासिक समय है जब वो राजा जिसका अधिकार है अनुग्रह के राज्य का मुकुट उस राज्य की स्थापना के समय अर्थात क्रूस पर प्राप्त करेगा।
अपवित्र दुष्ट प्रधान के लिए अंतिम लेखा जोखा का दिन आ पहुंचा था। प्रभु ने ये आज्ञा दी, पगड़ी उतार दे और मुकुट हटा दे। जब तक मसीह स्वयं अपना राज्य स्थापित न करे, तब तक यहूदा को फिर से राजा रखने की अनुमति न दी जानी थी। दाऊद के घराने के सिंहासन के विषय में ये दैवी आज्ञा दी गई, मैं इसे उलट दूंगा, उलट दूंगा, उलट दूंगा, और ये फिर न रहेगा जब तक वो न आए जिसका इस पर अधिकार है, और मैं ये उसे दे दूंगा। यहेजकेल 21:62। पैगंबर और राजा 451।
पिछली वर्षा के समय में जो 9/11 को जीवितों का न्याय आरंभ होने पर शुरू हुई, मसीह अपने महिमा के राज्य की स्थापना करता है।
जब वे चारों स्वर्गदूत छोड़ देंगे तब मसीह अपना राज्य स्थापित करेंगे। स्पॉल्डिंग एंड मैग्नन 3।
तैयारी की एक अवधि 9 खुतारी से आरंभ होती है और संडे लॉ के समय महिमामय पवित्र पर्वत सब पहाड़ियों और पर्वतों से ऊपर उठा दिया जाता है।
वो वचन जो आमोस के पुत्र यशायाह ने यहूदा और यरूशलेम के विषय में देखा, और अंतिम दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत पहाड़ों की चोटियों पर स्थिर किया जाएगा और वो सब पहाड़ियों से ऊंचा ठहराया जाएगा, और सब जातियां उसकी ओर उमड़ती चली आएंगी, और बहुत से लोग आकर कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर याकूब के परमेश्वर के भवन में चढ़ चले, और वो हमें अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि सियोन से व्यवस्था निकलेगी और यहोवा का वचन यरूशलेम से। यशाया 3:3।
9:11 को वायुओं को छोड़ दिया गया और फिर रोक दिया गया। इस प्रकार दानियल 2 के उस राज्य की स्थापना का आरंभ चिन्हित हुआ जो पर्वत में से काटे गए उस पत्थर के रूप में प्रस्तुत किया गया है
जो सारी पृथ्वी को भर देता है।
ये दर्शन 1847 में दिया गया था, जब सप्त मानने वाले एडवेंट भाइयों की संख्या बहुत थोड़ी थी और उनमें से भी बहुत कम ऐसे थे जो ये समझते थे कि उसका पालन इतना महत्वपूर्ण है कि वो परमेश्वर की प्रजा और अविश्वासियों के बीच एक विभाजन रेखा खींच दे। अब उस दर्शन की पूर्ति दिखाई देने लगी है। यहाँ उल्लिखित उस क्लेश काल का आरंभ उस समय का संकेत नहीं करता जब विपत्तियां उंडेली जाने लगेंगी, वरन उस अल्प अवधि का जो उनके उंडेला जाने से ठीक पहले होगी, जबकि मसीह पवित्र स्थान में है। उस समय जब उद्धार का कार्य समाप्ति पर होगा, पृथ्वी पर क्लेश आ रहा होगा और जातियां क्रोधित होंगी, तो भी उन्हें रोके रखा जाएगा ताकि तीसरे स्वर्गदूत के कार्य में बाधा ना पड़े। उसी समय पिछली वर्षा अथवा प्रभु की उपस्थिति से आने वाली ताजगी आएगी ताकि तीसरे स्वर्गदूत की बुलंद वाणी को सामर्थ्य दे और पवित्र लोगों को उस अवधि में स्थिर खड़े रहने के लिए तैयार करे जब अंतिम सात विपत्तियां उंडेली जाएंगी। अर्ली राइटिंग्स 91।
मसीह अपने अनंत राज्य की स्थापना उत्तर वृष्टि के समय करता है और उसके राज्य में अनुग्रह का वो राज्य भी सम्मिलित है जो क्रूस पर स्थापित किया गया था, तथा रविवार व्यवस्था के समय उसकी महिमा का राज्य भी। सिदकिया से बाबुल पहला राज्य, फिर मादी फारस दूसरा राज्य, फिर यूनान तीसरा राज्य और आगे बढ़ते हुए मूर्ति पूजक रोम चौथा राज्य तक का क्रम उस इतिहास की पहचान कराता है जो अनुग्रह के राज्य तक ले जाता है। वही इतिहास एक समानांतर ऐतिहासिक क्रम की पहचान भी कराता है। पोपीय रोम आध्यात्मिक बाबुल पांचवा राज्य से लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका आध्यात्मिक मादी फारस छठा राज्य तक, फिर संयुक्त राष्ट्र आध्यात्मिक यूनान सातवां राज्य तक और आगे बढ़ते हुए अजगर पशु और झूठे भविष्यद्वक्ता के त्रिविध संघ तक, जो मिलकर आधुनिक रोम का गठन करते हैं, आध्यात्मिक रोम आठवां राज्य जो उन सात में से है। दानियल 2 में उस राज्य की विजय एक चट्टान द्वारा निरूपित की गई है और परमेश्वर के विश्वास योग्य लोग मंदिर में पत्थर है।
तुम भी जीवित पत्थरों के समान एक आत्मिक भवन के रूप में बनाए जाते हो, अर्थात एक पवित्र याजक वर्ग, ताकि आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। 1 पत्रस 2:5।
वो अनंत राज्य संसार के राज्यों पर जय प्राप्त करता है और समस्त संसार को भर देता है। यहेजकेल के 40वें अध्याय से लेकर उसकी पुस्तक के अंत तक उसी राज्य को एक ऐसे मंदिर के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो जीवन के जल से संसार को भर देता है।
हम अगले लेख में इन बातों को आगे जारी रखेंगे।